बहुत बड़ा दखल होता है। सामने एक नीयत होती है, अंदर में काम का जज्बा होता है, नफा सामने होता है, तो फिर हर आदमी उस मेहनत में लग जाता है और अपने नतीजे तक पहुंचता है। इसलिए हदीसे पाक में फरमाया, वइन्नमा लिकुल्लि इमरिइन मा नवा, आदमी जो नियत करता है हक तआला शानहू उसके लिए उस चीज को आसान कर देता है। तो मेहनत का जज्बा इंसान के अंदर में, अब ये मेहनत का जज्बा और मेहनत की आदत जो है वो जिस चीज पर लगाएगा उस एतबार से उसका नफा होगा। अगर वो खाना कमाने पर लगाएगा और खाना खाएगा तो खाना खा लेगा, लेकिन उसका 3 घंटे के बाद में उसकी वो मेहनत खत्म हो जाएगी। खाना खाया, हजम हुआ, खत्म हो गया। और अगर इसकी मेहनत बका के लिए है तो फिर उसकी मेहनत बाकी रहती है। हर आदमी में अल्लाह ने सलाहियत दे रखी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह जल्ल शानहु ने इस उम्मत को नियत पर बहुत बड़े बड़े सवाब दिए। लगाएगा इतना ही, लेकिन उसकी नियत के एतबार से वो बढ़ता चला जाएगा। मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ कि एक मस्जिद में गश्त के लिए मगरिब की नमाज के बाद में बात हो रही थी। 3 आदमी आए मस्जिद में बाद में नमाज के लिए, नमाज पढ़ी। नमाज के बाद में एक आदमी ने ये नियत की कि अल्लाह के अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात हो रही है, चलो सुनो सवाब मिलेगा, वो आके बैठ गए। दूसरे आदमी ने सोचा कि यार ये अभी गश्त में जमात भेजेंगे तो इसके जरिए से इस गाँव में दीन जिंदा होगा, चलो अपने बैठ जाते हैं, सवाब मिलेगा। तीसरे आदमी ने ये नियत की कि ये अभी गश्त में जाएंगे, लोगों को जमा करेंगे, तश्कीलें करेंगे और यहाँ से जमा के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जाएंगे तो अपने को पूरे हिंदुस्तान में दीन के फैलने का सवाब मिल जाएगा। ये नियत करके बैठा। चौथा ये नियत करके बैठा, ये तश्कीलें करेंगे, जमाते बनाएंगे, चिल्ले की जमाते जाएगी इनकी और फिर उनमें से लोग जो है दुनिया के मुल्कों में दीन के लिए मेहनत के लिए जाएंगे तो उसमें मेरा हिस्सा हो जाएगा। अब 4 आदमियों ने अपने अपने तौर पर नियत की खाली और आकर सीधे बैठ गए। गश्त की बात हुई, जमाते गश्तों में गई, इन 3 को भेजा तो ये गए या वरना दौरान गश्त की बात में बैठे गए। ईशा तक इन्होंने सबने वक्त दिया, ईशा की नमाज पढ़ी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन 4 के सवाब में कोई फर्क होगा? अरे बोलो यार, 4 ने 1.5 घंटा लगाया है, 4 बैठे हैं, 4 ने इतनी ही मेहनत की है, लेकिन सवाब में जमीन आसमान का फर्क हो जाए। वो दीन की बात के सुनने का सवाब लेगा, वो बस्ती की दीनदारी का सवाब लेगा, वो हिंदुस्तान में दीन जिंदा होने का सवाब लेगा और वो पूरे आलम में दीन के जिंदा होने का सवाब लेगा। वक्त इतना ही लगा, लेकिन नियत जो है वो आदमी को कहां से कहां पहुंचा देती। बहुत बड़ी चीज हक ताला शान होने ये दी कि आदमी कोई भी अमल करे उसकी नियत बड़ी हो। पहली चीज तो मेरे दोस्तों ये, दूसरी चीज मेरे भाइयों ये है कि जब तक आदमी किसी चीज को तय नहीं करता वहां तक वो चीज वजूद में नहीं आती। आप में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर की। मैं आपके इस जूनागढ़ के इलाके में पहली मरतबा 1968 में आया था, मेरे साल का आखिरी चिल्ला यहाँ लगा था। महदूद लोग थे, पूरे काठियावाड़ में काम नहीं था, लेकिन अल्लाह गरी के रहमत फरमाए मांगरोल के उन बूढ़ों को जो उन्होंने इस जमाने में इस काम को लिया। लंबी सलाहियतें नहीं थी, लंबे वसाइल नहीं थे, लंबी चीजें नहीं थी, बस उसी से 1-8 साल पहले हजरत मुफ्ती साहब को हमारे काइसा और मौलाना ईसा साहब वगैरह ने यहाँ मांगरोल के लिए भेजा था। اور ان کے حالات بڑے عجیب تھے ان بوڑھوں کے, بلکہ یوں میں کہوں کہ پورے کاٹیاواڑ میں کام کی بنیاد ہمارا مانگروز. اور اس زمانے میں یہ محنت کرتے تھے, بڑوں کی بات کو ماننا, بڑوں کی بات کو لے کر چلنا, بڑوں کے ایک ایک اشارے پر کرنا, مشوروں میں آنا. اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی, وہ تو چلے گئے اپنے قبروں میں پہنچ گئے, ان میں کہ شاید کوئی زندہ نہیں ان بوڑھوں میں سے جو آپ کے یہاں سے پڑے. لیکن ان کے ذریعے سے پورے علاقے میں, پورے ماشاءاللہ کاٹیاواڑ میں کیا 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 کام ہوا, کیسے کیسے لوگوں نے قربانیاں دی. کسی وقت مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر سنیے, نام لے لے کر بتائیں گے اس بوڑھے نے کتنے قربانی دی, اس بوڑھے نے کیا کیا لگایا. مجھے یہاں کے قصے یاد ہے, لوگوں نے برتنیں بیچ بیچ کر کے کام کیا, گھر میں اور کوئی چیز نہیں تھی, برتن بیچے ہیں فاضل. اور تعالی شانہ نے ایک کام دیا, انہوں نے ایک چیز کو اٹھانا تھا, انہوں نے ایک چیز کو کیا یہ کرنا ہے. جب بندہ کسی چیز کو طے کر لیتا ہے تو پھر حق تعالیٰ شان ہو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا. الحمدللہ کل سے پرسوں سے ہم جو کافی کارگزاریاں تفقد کے وقت میں سنی, ہماری جماعت کا ہر ساتھی اللہ کا شکر ہے, اس مرتبہ یہاں کے کام سے بہت ہی طبیعتوں میں بشاشت. لیکن ہماری منزل اتنی نہیں, ہماری منزل اتنی نہیں, ہماری منزل ابھی آگے ہے. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, اور اللہ جل شانہ کا معاملہ اس وقت میں یہ ہے. ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھوک سے اور تنگیوں سے حق تعالیٰ شانہ کسی زمانے میں آزماتے تھے, لیکن امت کا ضعف ہے, امت کی کمزوری ہے, جس کی وجہ سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے فارغ کرنا شروع کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کو وسعت والی روزی دے دیتا ہے. پہلے تو اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں, پھر وہ اس کو بھی قربان کرتا ہے, اللہ اور آگے بڑھاتے ہیں, اللہ اور آگے بڑھاتے ہیں, اور اگر اس میں الجھ جاتا ہے تو پھنس جاتا ہے. یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا, من فقر اخشى علیک, مجھے تمہاری فقیری کا ڈر نہیں ہے, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ تمہاری اس محنت پر دنیا تم پر پھیلا دے گی. پھر جیسے پہلی امت ہے اس دنیا میں پھنسی, کہیں تم پھنس نہ جاؤ, اس نے مجھے اپنی امت پہ یہ فکر. ہر آدمی میں صلاحیتیں ہیں, ان صلاحیتوں کا ایک بنیاد ہماری ہے کہ ہمارا پورا علاقہ ایک نمونہ بنے, آگے بڑھے. ہم وہی پرانی چیزیں لے کر کب تک بیٹھے رہے ہیں؟ آج سارے ذمہ دار آپ بیٹھے ہوئے, اس لیے ہم بار بار اعلان کرتے ہیں بھائی بچوں کو نہ لاؤ, بچوں کو نہ لاؤ. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے تاکہ آپ یکسوئی سے کام کر سکیں. آپ میں صلاحیت ہے, استعداد ہے, لیکن وہی پرانی چیزوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. باپ ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان لے کر کے بیٹھا تھا, وہ اس زمانے میں بےچارا بیٹھا تھا جس زمانے میں اس کے ہزاروں میں آوک تھی. اب اس کے بیٹے جو ہے نادان ہیں, انہیں ابا کی دکان نہیں چھوڑنی ہے, اب لاکھوں کی مڑی ان کے پاس میں ہے اور وہی دکان لے کر کے بیٹھے ہوئے. تو ہر ایک آدمی کہے گا کہ نادان, اللہ نے دیے ہیں ہاتھ, دیے ہیں پاؤں, دیے ہیں, اللہ کا شکر ہے میں مڑی بڑی ہے, صلاحیتیں بڑی ہے, بچے کچھ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے باپ کی دکان کو باقی رکھے لیکن اپنی برانچوں کو بڑھاتا رہے. ہر ایک کہے گا اسے. کام جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے آدمی کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جس وقت میں پورے ہندوستان میں پھر کر کے ایک جماعت بیروت کی بنتی تھی, پورے ہندوستان میں اس کے شروع کے وقت لگانے والے جو ہے مولانا اسماعیل صاحب سے آپ پوچھے تو مولانا آپ کا جو پہلا سفر ہوا تھا آپ کے ساتھ کون تھا؟ ایک آدمی مدراس کا ہوگا, ایک آدمی ممبئی کا ہوگا, ایک آدمی کلکتہ کا ہوگا, ایک آدمی گجرات کا ہوگا. اس طریقے کی جماعتیں بنتی تھی. چلا کام. پھر آہستہ آہستہ اللہ نے استعدادیں بڑھائی, استعدادیں بڑھائی تو پھر صوبوں کی جماعتیں بننے لگی, گجرات کی جماعت, مدراس کی جماعت, تامل ناڈو کی جماعت, کیرالا کی جماعت, دلی کی جماعت, یو پی کی جماعت, صوبے سے جماعتیں بننے لگی. پھر جیسے جیسے استعداد بڑھتی چلی گئی, اس زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ گجرات میں جماعتیں جو بنتی تھی تو پورے گجرات کے ایک آدمی سورت کا, ایک آدمی بھڑوچ کا, ایک آدمی گودرا کا, ایک آدمی احمد آباد کا, ایک آدمی پالن پور کا, اس طریقے کی جماعت بننی شروع. میں خود جب 1974 میں گیا تھا تو اس زمانے میں میرے ساتھ مولوی چراغ تھے راجستھانی, ایک مولوی بشیر تھے میسور کے, ایک ہمارے یہاں کے مولوی صاحب تھے کالیڑا کے, اور میں یہاں کاکو سے. چار کی جماعت تھی 1.5 سال. پھر اس کے بعد میں جماعتیں بننے لگی گجرات کی, اللہ نے اس کا جان. پھر اور محنت آگے بڑھتی گئی بڑھتی گئی, تو اب یہ ہونے لگا کہ صاحب ہر ضلع جماعت بنانے لگا. بھائی یہ مانگرول ضلع کی جماعت ہے, صاحب یہ بھاؤ نگر کی جماعت ہے. اب ہر ضلع کو کہا گیا کہ آپ اپنے ضلع سے بیرون کی جماعت بناؤ. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عملہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. اب ہم یہاں آ کر اٹک گئے تو صاحب ہمارے مانگرول کی جماعت ہے تو ہماری ترقی رک جائے, استعداد رک جائے, کام کمزور ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا, سمجھدار باپ جانتے ہوں گے, ایک باپ نے دکان شروع کی تھی, اکیلا کرتا تھا, خریدی بھی وہ اکیلا کرتا تھا, بیچتا بھی وہ اکیلا تھا, سب کچھ وہ اکیلا کرتا تھا. بیٹا جوان ہوا 15-16 سال کا, وہ آ گیا دکان میں, اب دو ہو گئے. پھر دو نمبر کا بیٹا بڑا ہوا, وہ آنے لگا. تو سمجھدار باپ جو ہوتا ہے وہ فوراً یہ سوچتا ہے کہ اب کچھ دوسرا کرو. ہوتے ہوتے 3-4 ہو گئے اور ایک ہی دکان میں ہے تو دکان کمزور ہو جائے. وہ کہے گا وہ جائے گا, وہ کہے گا وہ جائے گا, دونوں کہیں گے ابا جائیں گے, ابا کہیں گے بیٹے بڑے ہو گئے. کام دینا پڑتا ہے, اگر ساتھیوں کو ترقی پر لانا ہے تو کام دینا پڑتا ہے. جتنے استعداد والے بڑھتے چلے جائیں گے کام آپ دیتے چلے جاؤ گے. صرف یہ تو دنیا داری کی مثالیں میں دے رہا ہوں, لیکن آدمی پر جو کام کھلتا ہے وہ جتنا بوجھ اپنے اوپر لیتا ہے. المعونۃ علی قدر المعونۃ, اللہ کی مدد آتی ہے ذمہ داری کے اٹھانے کی وقت. جب آدمی کسی چیز کو طے کرتا ہے تو پھر اس کا رونا شروع ہوتا ہے. ہمارا ایک ایک ساتھی اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. یہ کام جو کھلتا ہے وہ بوجھ لینے سے کھلتا ہے. اس لیے آپ دیکھو, اگر پرانوں کی جماعت 4 مہینے گئی ہوگی ایک بھی بن کے نہیں آئے, کوئی بوجھ ہی نہیں. نئےوں کی جماعت ہوگی اور اس میں 2 پرانے ہوں گے تو آپ دیکھو گے کہ نئے 8 بن کر کے اور یہ پرانے بھی بن کر کے آئیں گے. یہاں جو جتنا بوجھ اپنے پر لے گا, بوجھ اتنا بڑھے گا, اتنا آگے جائے گا. سب یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اور اس راہ میں حق تعالی شانہو حالات کے ذریعے سے بندے کی تربیت کرتے. ایک دم سے اللہ کی مدد نہیں آ جاتی. بدر میں کتنا رونا پڑا, نظر آتا تھا ہم ہلاک ہو جائیں گے, کوئی نہیں رہے گا. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی شانہو کے سامنے روتے 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 ایک ناز کا جملہ یہ بھی فرما دیا تھا, ان تہلی گھا دے گے سابا فلن تو ہوگا. اے اللہ, اگر آج تو نے اس جماعت کو ختم کر دیا تو پھر تیری قیامت تک عبادت نہیں ہوگی. بوجھ آتا, بوجھ میں آدمی بنتا ہے, بوجھ میں بنتا. جتنا بوجھ نہیں لے گا یہ نہیں بن سکتا, یہ گھر کو نہیں چلا سکتا, یہ مسجد اور جماعت کو نہیں چلا سکتا. ہوگا 4 مہینے بیس کے لگ گئے, چلے بھی لگ گئے, بیرون کے سفر بھی ہو گئے, لیکن بوجھ نہیں لے رہا. जब तक बोझ नहीं लेगा वहां तक रोना नहीं आएगा। हमारे जो साथी जिनकी तश्कीलें होती है अचानक से, उनके पास कुछ नहीं होता और एकदम से कहा जाता है तुझे जाना, और वो आदमी उस तकाजे को अपने पर ले जाता है, फिर बोझ पड़ता है। बड़ों की तरबियत के अंदाज होते हैं, और हम ताला शान हूं तकाजों के रास्ते से अपने बंदों की तरबियत करते हैं। कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा बोझ पड़ता है कुछ समझ में नहीं आएगा। मुझे याद है 1974 में वालिद साहब ने मई महीने में कह दिया कि अब से तुम अपने बच्चों का खर्च तुम चलाओ। बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। सितंबर के महीने, नहीं जुलाई के महीने में मौला उमर साहब आए, उस जमाने में हमारे पूरे इलाके का इज्तिमा था। उससे पहले कई अरब मुझे पकड़ पकड़ कर निजामुद्दीन में मौला के पास ले गए कि मौला इसको बेरून भेजो, और मौलाना कह देते थे कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। अब वहां बाप का सहारा टूटा, बाप ने कह दिया। उस जमाने में तनख्वाह 130 रुपये, मजादर में इज्तिमा चल रहा था। फजर की नमाज के बाद अल्लाह ने जहन में डाला, मैंने अपने साथियों से कहा यार ये क्या मुसीबत है हम लोगों की, हजरत को लाने में, इलाके में मेहनत करने में सब कुछ, और हम लोग इतने कामों में मशगूल कि एक बयान इत्मीनान से नहीं मिलता। सारे कागजात मैंने जमा किए, उसमें डाल मैंने, चलो सबके फजर के बाद पुरानों में मौलाना की बात थी। और मौलाना इस्माइल साहब अल्लाह ने गरी के रहमत फरमाया, ए मौलाना इस्माइल फिर कब जमा दी, मैंने तो मौलाना छोड़ो चलो ना मेरे हवाले कर दीजिए। वहां पहुंचा मैं तो घूम कर जहां बयान वाले की जगह थी वहां करीब जाकर के बैठा, मौलाना का बयान शुरू हुआ। आधा घंटा मौलाना के बयान का बाकी होगा और मेरे मुझे आज वार अपने पर है, बता रही क्यों। मेरे पास हमारे हजी सुलेमान मोमाए बैठे थे, बड़े समझदार, बड़े माशाल्लाह तरबियत करने वाले आदमी। मैंने उनके कान में कहा, मैंने कहा भाई आज वार मुझ पर है। उनका नहीं नहीं कोई ऐसी बात होती तो मौलाना मुझे कहते, मुझे कोई बात नहीं कही। और मेरी तबीयत ये रही कि नहीं आज कुछ आने वाला है। 5 मिनट बाकी हो गए और मुझे इतना शरे सदर हो गया कि मैंने सुलेमान हुमायूं के कान में ये कहा कि अगर आप कहे तो कसम खाओ आज मुझ पर वार है। इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। और वाक्य जहां बयान मौलाना ने खत्म किया तो ये नहीं कहा कि बोलो भाई, पहला जुमला यह था कि मैं उस्मान कहा, मैं वहां उस तरफ बैठा हुआ था, खड़ा हो गया। जे तुम्हें साल डेढ़ साल के लिए हिजाब जाना है, दो हज करके वापस आना है, खड़ा हो जी तैयार हो। जी हजरत मौड़ा थे, मौड़ा ने कहा मुझसे तखलिया में तुम मुलाकात मत करना, मैं कमजोर आदमी हूं। मोहर का जुमला भरे मजमे में खैर बात हो गई। अब हमारे तो वहां जा गए तो न पर्चा सूझे न नाम सूझे। 130 रुपये तनख्वाह, उस जमाने में 500 रुपये का कर मकरूज, पीछे जाओ बीवी का खर्चा दो, वहां जाओ मदरसे से इजाजत ली तो तनख्वाह बन। मैं क्या बताऊं आपको, उसका बोझ मुझ पर इतना था कि रात को इशा की नमाज के बाद हमारी मस्जिद के आगे वो सीढ़िया थी, उस सीढ़िया का जो बैठने का होता है उठला, उस पर मैं यूं बैठता था। अच्छा जबान में ये कि सिवाय अल्लाह के किसी को कहता नहीं, इसलिए सामने ये है कि डेढ़ साल के अभी जाएंगे, डेढ़ साल के बाद आएंगे, कर्जा लेंगे तो गोया आते ही कोई घर में रकम तो इनकम तो आई नहीं है, 2.5 साल के वादे से कर्जा लेना। तो वहां बैठता था बाज वक्त, वहां बस वही सामने चांद होता था और मैं होता था ये बैठा हुआ। मुझे ये एहसास नहीं होता था कितने बजे रात को, जो रात को बैठने वाले लोग होते थे ना वो 1 बजे वहां से अपने घर जाने के लिए गुजरते थे, तो वो कहते थे मौसा कोई तकलीफ से तुम बैठा हो, चुप 1 बजे मौसा है फिर जाता था। अजीब हालात में था, घर वाले भी कह रहे मौसा क्या बात है पागल जैसे हो रहे हो, बोझ था, लेकिन तबियत में एक ही बात तय की थी, तकाजा पूरा करना, जाना है ये थे। दो महीने तक, अच्छा इस दौरान में वालिद साहब को थोड़ा सा ये अंदाज हो गया कि ये शायद घूम घुमा करके मेरे को फिर कुछ ले जाएगा मेरे पास, तो वालिद साहब ने सामने से मुझे कहा भाई कर्जा ज्यादा हो गया है, कहीं से मिले तो 5,000 रुपया कर्जा मेरे को एक साल के लिए ला कर दे दे। वो भी पूछ लगा दी सिवाय अल्लाह के, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत के साथ। वो हमारा एक साथी था, मुझे वो भी याद है, अल्लाह उसे घर के रहमत फरमाए। हम 3 दिन की जमात लेके मैं रमजान में गया, रमजान के बाद निकलना है, अभी तो कुछ इंतजाम नहीं हुआ, कहीं से मैंने कुछ नहीं लिया और किसी के सामने कहा नहीं। भाई दाऊद नाम था उनका, वो 3 दिन में मेरे साथ चले। वदानी की मस्जिद में जोहर की नमाज के बाद रोजे से थे, मैं बिस्तर लगा रहा था, उन्होंने मेरे पास बिस्तर लगाया, बैठे उनको वहां एक काम बात करने चाह रही, मैंने कहा क्या है, तो मेरे पास घर में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, अभी मुझे मेरे को कोई जरूरत नहीं है 3-4 साल के लिए, अगर आपको जरूरत हो तो मैं ये 5,000 रुपये आपको कर्ज दे सकता हूँ 3 साल के लिए। मैं एकदम से चौंका, मैं क्या है तुम्हें किसी ने कुछ कहा, नहीं हो सब नहीं, उनका सच बताओ, उनको बिल्कुल नहीं मालूम, नहीं मुझे कुछ पता नहीं। आज मेरे जहन में आया था कि मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, वो सब जमातों में आते जाते रहते, कहीं जरूरत हो तो इस्तेमाल कर ले, 2-3 साल के बाद दे देंगे, कोई हर्ज नहीं। ये पहली मदद शुरू हुई, उसके बाद मैं किसी के पास गया नहीं, सामने से ही आ रहे। यहां तक कि मैं रवाना हो गया मुंबई, उस जमाने में पानी के जहाज से जाते थे तो वहां रुकना पड़ता था टिकट लेने के लिए, तो वहां रुका हुआ था एक मुंबई के साथी, वही जिस गांव में मैं पढ़ा था वहां के आए, तो उन्होंने सुना आप सफर में जा रहे, मैं कहा इसीलिए आया हूँ, आपको जरूरत हो तो कुछ पैसे मैं कर्ज दे सकता हूँ, मैं तो मुझे जरूरत नहीं, मेरी जरूरत पूरी हो गई, मौलाना मेरे को छोड़ दिया आपने, आप ले लो, मैं तो क्या करूँगा ले जाकर, मेरी जरूरत तो पूरा हो गया, तो वहाँ 5,000 रुपये हैं 3 साल के बाद आप देना, लेकिन उसे किसी जगह कबूल कर लो, लाए हो या शाम को लाओगे, उनका ले आए हो, मैं तो ले आओ ले आओ। मैंने किसी जाने वाले के साथ अब्बा के ऊपर भेजा, मैंने कहा ये 2 साल के बाद में मुझे दीजिएगा,
उन्होंने 5,000 मांगे थे।
एक बात मेरे दोस्तों, जिंदगी के तजर्बात में ये कि जिस तकाजे को आदमी ले लेता है, ये मेरे साथ मखसूस नहीं है, ये जितने दावत के काम करने वाले हैं और जिन्होंने आज तक काम को अपना काम बनाया है, वो तमाम घाटियों से गुजरे, लेकिन शर्त यह है कि आदमी किसी चीज को तय करे कि मुझे करना है, फिर इस पर अल्लाह की मदद आएगी, इस पर अल्लाह की नुसरत आएगी, और आदमी इसमें बनता है, अल्लाह हालात लाते हैं, इसे याद रखो, अल्लाह हालात लाते हैं, आजमाइश करते हैं, नफ्स और शैतान पूरी ताकत लगाते हैं, साथियों की जबान पर शैतान बोलता है, ये होगा, लेकिन आदमी जम जाए नहीं साहब ये करना है। जैसे अपने घर में अपने बीवी और अपने बच्चे भूखे बैठे हैं और आदमी कितना बेकल हो जाता है, बेकरार हो जाता है, इस तरीके से दीन के तकाजे को आदमी ले, ये तकाजा है, इसे पूरा करना है, और बड़ी ताकत अल्लाह ने दी है सलातुल हाजा की, बेकरारी की, तो उसमें कोई सलाहियत नहीं होती, उसके पास लंबा इल्म नहीं होता, उसके पास लंबे पैसे नहीं होते, लेकिन जब इस बेकरारी के साथ में ये उठता है तो ऊपर से फैसला आता है, बंदा मैंने तुझे अपने काम के लिए कबूल कर लिया है, कबूलियत ऊपर से आती है। वो अल्लाह फिर उससे काम लेता है, फिर दुनिया हैरान रह जाती है, ये कैसे चल रहा है, ये कैसे मुल्कों के सफर कर रहा है, इस बुढ़ापे में किस हिम्मत के साथ ये कैसे चल रहा है, दुनिया हैरान रह जाती है। अल्लाह ताला शान हो उस एक आदमी को लाखों इंसानों के हिदायत का जरिया बना देते, लेकिन पहले किसी चीज को तय करना पड़ेगा, ये करना है मुझे, ये मुझे करना है, इसको तय करना पड़ता है। फिर अपने बस में जितनी ताकत हो उसको लगा देनी पड़ती। फिर अल्लाह ताला शान हूं, इसलिए कि इस ये राह राह तरबियत है। इस राह की तरबियत के अंदाज कुछ निराले हैं। जब आदमी अल्लाह को बनना चाहता है तो अल्लाह इसको एक घाटी में लाते हैं। उस घाटी में लाके खड़ा कर देते। कोई भी तकाजा आएगा एक घाटी आएगी बीच। बड़े अजीब हालात होंगे, एन आदमी का कोई हालात नहीं है, एन वक्त पर आ गए, एन वक्त पर चलना है और हाल आ गए। ये आजमाइश होती। अभी आदमी अपनी नीयत पर जमा रहता है, अल्लाह की मदद उसे पकड़ लेता, फिर ये आगे बढ़ता है। फिर ये घाटी दोबारा नहीं आती। जिस घाटी को एक मरतबा पार कर लिया, ये दोबारा नहीं आएगी, याद रखना। और घाटी ज्यादा दिन नहीं रहती, वो अल्लाह लाते हैं कि मेरा बंदा मुझसे जुड़ता है या नहीं, पर जमता है या नहीं। फिर अल्लाह की मदद उस घाटी को पार कर लिया, अब ये घाटी दोबारा नहीं आई। फिर उससे ऊपर की, फिर उससे ऊपर की, फिर उससे ऊपर की, फिर यहां तक आदमी अल्लाह का हो जाता है। अब किसी तकाजे के लिए उसको तैयार करना नहीं पड़ता, खाली इत्तला देनी पड़ती, मैं आपके मुताबिक ये तय हुआ, आपके मुताबिक ये तय हुआ। मुझे हमारे इन दोस्तों में ही है साथी, निजामुद्दीन में हम थे, उस जमाने में मुख्तलिफ तकाजे आए थे, तो 45,000 का तकाजा था। उस साथी ने अपने आप को पेश किया कि इस तकाजे पर मैं जा सकता हूँ। हमने नाम लिख करके भेज दिया। नीचे आखिरी दिन जब जमातें बनने लगी तो उसका नाम आया कि भाई ये इसको इसका तकाजा 45,000 वाली जमात में। उनमें से किसी ने कहा कि नहीं, ये उसकी बजाय खुला जगह चले जाए, वेस्ट इंडीज तो बहुत अच्छा है। अब वेस्ट इंडीज का तकाजा जो था वो 1.5 लाख का था, लेकिन अकाबरी ने उससे पूछा नहीं कि तू तैयार है या नहीं। वहीं से नीचे से बन के आया कि भाई इनको बजाय 45,000 के इनके मुताबिक ये तय हुआ है कि उसमें जा रहे। मैं सोचने लगा, मैंने कहा अल्लाह खैर करूंगा, लेकिन 45 कहा और 1.5 लाख का। मैंने उनसे कहा, मैंने भाई ये बात नीचे से आई है, तो ठीक है वहां बड़ों ने जो तय किया चला जाऊंगा, यह है बात। फिर उसको तैयार करना नहीं पड़ना, उसको ये कि मशवरे में ये तय हुआ है, वो खुद तकाजे पैदा करता है, ये होना चाहिए। हालांकि उसे पता है कि ये तकाजा मैं पैदा करूंगा तो सबसे पहले मेरा नाम आएगा, लेकिन हमारा समझते। फिर ऐसे लोगों की दुआ पर ऐसे ऐसे मसाइल, जो माल वाले और मुल्क वाले परेशान होकर उन मसाइल को हल नहीं कर पाते, ये दो रकात पढ़ करके उस मसले को हल कर देते। अल्लाह से इतना तकल्लुफ हो जाता, वो अल्लाह का बंदा बन जाता। बस मुझे लंबी बात नहीं करनी, पूरा मजमा बैठा रही, खुदा आज इंतजार मत करिए। मांगरोल चल रहा है, मांगरोल से मुराद मेरा पूरा जूनागढ़ है, चल रहा है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन यही रहोगे या कुछ आगे बढ़ना है? बोलो, आगे बढ़ना है तो वो बात करूं, और अगर यही रहना है तो वो करूं। बोलो, आगे बढ़ना है। और जो आगे बढ़ना चाहता है उसे अल्लाह आगे बढ़ाते। अल्लाह ने दिया है वो अल्लाह ही का दिया हुआ है, तुम्हारे हालात पहले जैसे नहीं, वो अल्लाह दे रहा है। और इसी काम की बुनियाद पर अल्लाह ने दिया है, इसी तुम्हारी दीनदारी पर दिया है। वरना तुमसे अच्छे पढ़े लिखे, तुमसे अच्छे होशियार लोग तुम्हारे जिले के मुख्तलिफ मकाम पर है, लेकिन अल्लाह चला रहा है, अल्लाह बढ़ा रहा है। बढ़ने का रास्ता यह है, एक सीढ़ी पर चढ़े अगली सीढ़ी का सोचो, वहां चढ़े अगली सीढ़ी का सोचो, वहां खड़े मत हो जाओ, वो अल्लाह चला रहा है हाथ पकड़ के। आज मांगरोल ये तय करे, अब तक ये जमाते आपकी बिरून की जो बन रही है वो पूरे मांगरोल हल्के की, पूरे मांगरोल की बन रही है, उससे उसको और आगे बढ़ाओ। अब ये बेरून की जमाते आपकी बने, हर साल बने और हर हल्के से बने, खुदा करे मेरी बात समझ में आ जाए। हर हलका तय करे, मुझे इस साल में बेरून की जमात हमारे हलके से बनानी है। तुम कहोगे कवायफ नहीं है, जब लोग तकाजा खुदा कवायफ वाले भी पैदा करेंगे, जमातों को लेकर चलने वाले भी खुदा देंगे। पहली चीज यह है कि तकाजा अंदर में जब लेता है आदमी, तो एक कहावत है, जरूरत ईजाद की माँ है। जब इसको तकाजा लोगे तो खुदा तुम्हें कवायफ वाले के हर हलके में बना देंगे और तुम्हारे यहाँ जमाते लेकर जाने वाले भी बना देंगे। ये 2020 आ रहा है। देखो मैं ये बात करूं, उसके बाद मुझे अगली बात करनी है, इसलिए इंतजार मत करियो। अभी तो 8:30 बज रहे हैं। एक अंदर की जज्बे के साथ, तय करने के साथ 2020 आ रहा है। इस 2020 में मेरे हलके से लोग गरीब नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। जहां जौन सी गली में, जौन से देहात में चले जाओ तो तामीरी काम चल रहा है, घर बन रहे हैं। जहां स्कूटर नहीं होता था,
क्या करूं भाई,
दूर रह,
बस अब ये आदत पड़ गई,
बस अब जाएगी, अब जाएगी,
इतना गरीब
की बस अब जाएगी।
नीचे से एक तकाजा लोग हैं, इस तकाजे के लोग सबसे पहले तकाजा लेने वाले बनेंगे, अल्लाह उनके जरिए से वजूद में लाएगा। ये 2020 है, 2020 में हलके की बुनियाद पर आज फैसले करो कि हम 2020 में बेरून की जितने ज्यादा लंबे खर्च का तय करोगे खुदा इतना देगा। मैंने पहले कहा आपसे, वो तीन की मिसाल दी थी, जो नियत है वो नियत को खुदा आसान करेंगे। वही नमाले कुल इमरीम मानवा, जो आदमी नियत करता है अल्लाह वो देते हैं। अना इंद जन्य आबदी भी, मेरा बंदा जो गुमान करेगा मैं दूंगा। एक हदीस में तो ये है, गुमान करके देख ले। इसलिए आज हमारा ये मजमा एक फैसले पर, आज आपके यहां आज वो संगे मील आता है ना, गुजराती में शू कहने, रास्ते में दो रास्ते आते हैं, वो बुनियादी चीज होती है, कौन सा रास्ता आदमी लेता है। आज फैसले का दिन, खुदा करे आज का दिन आपके लिए इंतहाई ऊपर की तरक्की का दिन साबित हो जाए। आज कुछ फैसले करो अपनी जात के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने हलके के लिए, अपनी मस्जिद के लिए। कुछ घड़ियां होती और कुछ घड़ियां हाथ में से चली जाती है तो फिर जिंदगी भर वो घड़ी हाथ में नहीं आती। इसलिए पहला फैसला तो हर हलके वाले ये करो कि 2020 में हलके की बुनियाद पर मेरे हलके से बिरून की मुझे इतने खर्च की जमात बनानी, खुला महीने में पहली, खुला महीने में दूसरी। दो की नियतें दो करो, एक की नियतें एक करो, लेकिन ये तय करो कि मेरे हलके से हमें बिरून की जमात बनानी है और इंशाल्लाह हम इसके लिए मेहनत करेंगे। करोगे? अब जरा थोड़ी सी देर के लिए आपस में मुजाकरा करके 5 मिनट देता हूं और हर हलके वाले बताओ 2020 में तुम्हारे हलके से बेरून की किस खर्च की कितनी जमाते दोगे,
कौन से महीने में
और कौन से महीने में दोगे। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? जितने लंबे दूर जाओगे महीनों में इतने फंसते जाओगे, जितने जल्दी के महीने करोगे इतने जल्दी इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। अब बताओ कौन से हलके वाले तय करते हैं कि 2020 में हम अपने हलके की बेरून की इतनी जमातें बनाएंगे।